अब आगे थोड़ी सी मजीद इससे बातें सीखेंगे। उस शख्स ने तो कह दिया कि फासा रब्बी युत यानी खैरा मिन जन्नतिक, और साथ ही साथ सिर्फ उसको वॉर्न करने के लिए। देखिए अगले जुमले से पहले मुझे थोड़ी सी तमहीद बांधनी है, वरना कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे इस मुस्लिम ब्रदर को जिसका यहाँ किस्सा है। और वो क्या कि मुसलमान दूसरे का खैर ख्वाह होता है, गलत बात नहीं सोचता उसके लिए, लेकिन उसको ये पता होता है कि जो लोगों के रवैये हैं इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। तो उसने खतरा महसूस करते हुए अपने उस अमीर दोस्त के बारे में कहा कि मुझे डर है इस बात का कि वह युरसिल अलैहा हुस्बाना मिन समाई, और वो भेजते इस तेरे बाग पर कोई आफत आसमान से, फिर होगा क्या फतुस भी खसाईदन जलका, तो वो इसको साफ चटियल मैदान कर देगी। यानी ये बाग जिसके ऊपर तू बहुत मान कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि आसमान से कोई आफत आएगी। ये जो लफ्ज है ना हुस्बान, पत्थरों की बारिश को कहते हैं, हस्सा कंकरी को भी कहते हैं, तो हुस्बान वो बारिश जिसमें पत्थर बरसे, मुराद जहां अजाब है। तो उस भी हम इस बहा यस बहा से जलका कहते हैं फिसलने वाली चीज को, स्लिपरी के मानों में इंग्लिश में आप कह सकते हैं, वो पत्थर जिसपे कुछ उगे ना, बहुत चमकता हुआ पत्थर खूबसूरत तो लगता है ना, लेकिन आप देखिए कि अगर आप उसमें उगाने की कोशिश करें तो कुछ नहीं उगता। तो मुराद ये कि ये बजाहर चमकता हुआ तेरा बाग है लेकिन बैरन हो जाए, इसमें कुछ दिखे भी ना। और क्या अंदेश है आयत 41, और युस बिखा मा उहा गौरन, या फिर इसका पानी गहराई में उतर जाए, यानी कुओं का पानी खुश्क हो गया इस मानी में, यानी जिस पानी की वजह से ये बाग इतना सरसब्ज है, अगर ये पानी खत्म हो गया फलन तस्तती लहू तलबा, तो तुम तो इस पानी को कभी भी हासिल नहीं करोगे। मतलब यह है कि इतना मान ना करो, एक वक्त आएगा कि हो सकता है, खतरा है इस बात का कि ये बाग जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाए, या तो आसमान से कोई आफत आ जाए या पानी नीचे चला जाए, तुम्हारा सारा पानी का निजाम खत्म हो जाए, कुछ भी हो अल्लाह सबब पैदा करेगा और तुम्हारा ये बाग खत्म हो जाएगा और फिर तुम नुकसान में होगे। अब इस आखिरी जुमले को पढ़ने के बाद फिर हम आगे जाएंगे कि क्या इसने उसको बद्दुआ दी है। नंबर एक, क्या उससे जलन हसद है? और क्या हम अपने अमीर रिश्तेदारों के बारे में अब यही कहें कि देखना एक दिन तुम्हारे कारखाने को आग लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां से थोड़ा सा समझ लीजिए मोमिन का किरदार। मोमिन कईस होता है। कईस किसको कहते हैं? कयास लफ्ज ज़हन में रख ले, जीनियस, आने वाले वक्त के खतरे पहले से भांप लेता है। ये जो बातें मैं आपको कह रही थी, जैसे अभी पीछे भी बात की है ना कि ये हो रहा है हमारे बच्चों हमारी नस्लों में, तो ये एक आने वाले खतरे का अलार्म है कि आने वाले दौर में तो मादा परस्ती फिर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है कि शादी हो और माँ बनने के सारे जरासीम ही निकलवा दें जिसम से, इस सोच से कि नहीं बच्चे पैदा किए तो औरत को मां नहीं सकेगी। इसकी हल्की हल्की झलकियां तो आज भी मौजूद हैं। शादी के बावजूद लोग कहते हैं नहीं अभी बच्चे नहीं पैदा करने क्योंकि अभी कमा रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और अभी जब सारे कामों से फारिग होंगे फिर बच्चे पैदा करेंगे। ये हल्के हल्के इशारे तो मौजूद हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि इससे बहुत शदीद, और ये सब कुछ होगा देखिएगा दुनिया में पनपने के नाम पर। तो आने वाले खतरे को इस शख्स ने भांप लिया था। मोमिन को ये पता चल जाता है कि जो शख्स जिस रविश पे चल रहा है ना वहीं पहुंचेगा। आप नॉर्थ साइड पे जाएंगे तो किधर पहुंचेंगे? नॉर्दर्न पे एरिया पे पहुंचेंगे, और साउथ साइड पे जाएंगे तो साउथ में पहुंचेंगे। मोमिन को ये समझ आ जाती है कि ये जो इसका लाइफस्टाइल है ना, ये देखना आखिर में इसको पकड़ेगा। आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि आप किसी दूर से जगह से होके आए और आपने देख लिया कि आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, बहुत रश है, या सड़क टूटी हुई है, या वहां कोई हादसा हुआ हुआ है। अब आप बीच में यहां आके खड़े हो गए। अब उधर से जो गाड़ियां दन दनाती भी आ रही हैं उनको तो नहीं पता आगे जाके हम किधर जाएंगे। आप उस वक्त क्या सोचते हैं कि अभी जो 60 की स्पीड पे गया ना, देखना 1 किलोमीटर के बाद इसकी गाड़ी 20 पे चली जानी है। फिर आप उसको हाथ रोक के अगर कहते हैं कि रुको जरा हल्का करो, देखो इधर ना जाओ, ये रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तुम साइड पे चले जाओ, ये खैर ख्वाही है। अद्दीनो नसीहा, ये इसकी सरासर खैर ख्वाही है कि पहले तो उसको अल्लाह की तरफ जोड़ रहा है कि माशाल्लाह को, और अब उसको उसके बुरे आमाल के खतरे से आगाह कर रहा है कि तुम ये जो कुछ कर रहे हो ये सिर्फ एक ख्वाबों का शीश महल है, एक हल्के से झटके से चिकना चूर होगा। और ऐसा ही हुआ। अगली आयत देख ले 42, वह ही तभी समरी ही, और इसका सारा फल समेट लिया गया। अल्लाह को कोई देर लगती है? एक आंधी आई होगी, उसने उसके सारे फल को यूं इकट्ठा करके कूड़े के ढेर पे जमा कर दिया होगा, सब जो ये लफ्ज ओही तक बहुत मीनिंगफुल है, समेट लिया गया, सारा समेट के एक तरफ कर दिया, बाग उजड़ गया, औलाद छिन गई। इससे पता चलता है ना कि ये दूसरा शख्स अल्लाह का मुकर्रब था, क्योंकि मालदार ने तो उसको ताना दिया था ना कि अना अक्सर मिन का मालम वाजु नफरा, लेकिन उस नेक बंदे का दिल दुखा और जिसकी सजा फौरी तौर पर उसको मिली। कहते हैं कि इसको ये सजा क्यों मिली कि इसने अल्लाह के एक नेक बंदे का दिल तोड़ दिया। हदीस कुदसी में आता है, मनाद अली वलीयन, जिसने मेरे किसी वली से मेरे दोस्त से दुश्मनी की, फकद आज़न्तुहु बिलहर्बी, तो उसको मेरी तरफ से जंग की खबर दे दो, यानी ऐलाने जंग है उसके लिए। तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना, अपनी बड़ाई में पढ़कर किसी को दुखी ना करें। एक शेर भी है फारसी का कि जिसका खुलासा किया कि जब अल्लाह के किसी दोस्त के दिल को ठेस पहुंचती है तो अल्लाह उसके बदले में पूरी कौम को गिरफ्त में ले आता है। और उसका हाल फिर क्या हुआ, फस बहुकलान फ़कबी, हाँ तो वो हाथ मलता रह गया इस पर जो कुछ उसने उसमें खर्च किया था, यानी असल रास भी लूट डूब गई, कैपिटल ऑफ मनी भी डूब गया, असल भी गया। बहुत माल लगा हुआ था, वक्त था, मेहनत थी, सारी जिंदगी का सरमाया था, सब डूब गया। बाग का हाल क्या था, बगिया खावियत नलाशी, हाँ और वो बाग अपनी छतरियों पर गिरा पड़ा था। आपको पता ना कि खजूरों की जो बेले होती हैं उसको बाज़ दफ़ा लोग ऊपर करके तो बांध के छत सी बना लेते हैं, उसको जहन में ले आए कि वो सब बेलें जो थी वो नीचे पड़ी हुई थी। वो यकूल या लैतनी लम अशरिक बिरब्बी अहदा, और वो कह रहा था, हाय मेरी शामत, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। अब समझ आया शिर्क कौन था, किसका शिर्क था, अब उसको एहसास हुआ। इस एक मुकालमे से समझ आ गई कि अल्लाह के इख्तियार को भुलाकर ज़ाहरी असबाब और मादी वसाइल पे तवक्कुल किया, ये था वो शिर्क जिसका आज वो इतराफ कर रहा है। और आज की मादा प्रस्ताना ज़हनियत का मुकम्मल नक्शा, ये शिर्क जदीदा है, नई किस्म का शिर्क है। ये शिर्क हर दौर में रिवाज बदलता है, रस्म बदलता है, शक्ल बदलता है, तो आज का शिर्क भी यही है। और जब देखिए मुश्किल पड़ी तो वलम तकुल लहू फियतुन्सुरूनहु मिन दूनिल्लाह, और ना हुई कोई उसके लिए जमात जो उसकी मदद करती अल्लाह के मुकाबले में, वमा काना मुंतसिरा, और ना ही वो रहा इंतकाम लेने वालों में, खुद ना किसी का इंतकाम ले सका। ये जो लफ्ज है ना इंतसरा, नसरा से ही है, नसर कहते हैं आम मदद को, लेकिन जब इसमें ताल लग गई इंतसरा तो जुल्म से बचाना, बदला लेने के मानों में, रिवेंज के मानों में। वो किधर गए सारे जिसके ये गुन गा रहा था कि मेरी नफरी भी बहुत है तो माल बहुत है, वो सब चले गए। तो जब माल जाता है ना तो माल की वजह से बनने वाले लोग, दोस्त और रिश्तेदार है, वो भी चले जाते हैं। और हुआ क्या, उसको ये बात समझ आ गई कि होना निकल वाला या तो हक, या तो तमाम इख्तियार अल्लाह का है जो अलहक है। ये लफ्ज जो विलायत है इसका रूट क्या होगा, वाओलाम या सजी शाबा, जैसे वली का लफ्ज हम पढ़ते हैं वही लफ्ज है। विलायत का मानी क्या होता है, इख्तियार। वाली कहते हैं किसी मुल्क और इलाके के मालिक या हुक्मरान को, और वाओ पे जबर होगी ना, देखिए विलायत नहीं है, वाओ पे जबर है, वाओ की जबर के साथ है, तो यहां मुराद है इख्तदार और इख्तियार। ये लफ्ज कभी आपने उर्दू में सुना, आजकल जहां मैं और आप बैठे हैं इसको क्या कहते हैं, हम बैठे हैं यूरोप में, यूके में, और क्या कहते हैं, लंदन। पहले दौर के लोग क्या कहते थे, वो सही बोली है, विलायत। पहले दौर में कहते थे वो विलायत, ये वही लफ्ज है। उस दौर में चूंकि ब्रिटिश एम्पायर की धाक थी, आज भी वैसे मछला बड़ी है, आज भी हमने उनका ही गलबा माना है, तो यही विलायत बोलते थे। और आप देखिए इस लफ्ज वली से बहुत कुछ बनता है, दोस्त और पुष्पना, और जब वाओ की जेर होगी ना विलायत, तो फिर इससे मुराद दोस्ती और मोहब्बत होगी। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर में ये लफ्ज़ गुजरा है, सूरह बकरा 257, और इसी तरह सूरह यूनुस 62, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो गोया के समझ आ गई कि इख्तियार अल्लाह का, हुवा खैरुन सवाबं व खैरुन उक्बा, वही बेहतर है इनाम देने में और वही बेहतर है आकबत के अंजाम से, यानी उस शख्स को ये नसीहत हासिल हो गई। अब यहाँ ये किस्सा तो खत्म हुआ, इसका असल जो सिखाना था वो अगले हिस्से में आएगा, लेकिन हम इस पे चंद लफ्ज जरूर सीखेंगे अपने लिए भी। पहली बात यह कि ये शख्स मुसलमान था, लेकिन माल और दौलत के नशे में बह गया था। जब दौलत गई तो इसको बात समझ आ गई। इधर से अमल की एक बात तो लिखिए कि बास दफा दुनिया की दौलत और दुनिया की सेहत और माल और औलाद चला जाता है, लेकिन ईमान की दौलत मिल जाती है। बड़े खूबसूरत एक कॉल किसी ने मुझे चंद दिन पहले भेजा कि दुनिया की दौलत और ईमान की दौलत जितनी जितनी बढ़ती है उतनी रातों की नींद कम हो जाती है। बात बनती है कुछ? दुनिया के बढ़ने से रातों की नींद क्यों जाती है? और कमाना, और ईमान की दौलत आए तो तजाफा जनोबाची यदम, फिर अल्लाह को मनाने में, अल्लाह से बातें करने में मजा आता है। और खुफिया काम तो रातों को ही होते हैं ना। ईमान की दौलत वाला रातों को अपने रब से बातें करता है। और आप ये मजमून कुरान पाक में कई जगह पढ़ेंगे कि जहां लोगों को ये बातें सिखाई जाती हैं। फिर दूसरी बात इसमें थोड़ी सी करने की, जो बीच में मैंने नहीं रोकना मुनासिब समझा, लफ्ज माशाल्लाह, इसके बारे में पहली बात देखिए कि मैंने आपको इशारतन बता दिया था कि बच्चों को इसकी आदत डालने से ज्यादा बच्चों का अकीदा बनाएं। बेटा जो मिलता है अल्लाह से मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह कहने को मजाक ना बनाए। माशा, इसके कहने की टोन भी कुछ होती है ना जी, माशाल्लाह, इस तरह की टोन ना इस्तेमाल करें। फिर बस सलफ कहते हैं कि अपनी औलाद या माल या उनका कोई हाल पसंद आए तो ये कलमा पढ़ लो। मुस्तफा अहमद की रिवायत है, क्या मैं तुम्हें जन्नत का एक खजाना ना बताऊं? वो खजाना है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे ने मान लिया और अपना मामला मेरे सुपुर्द कर दिया। हजरत अबू हुरैरा से फिर पूछा गया तो आपने फरमाया सिर्फ ला हौला नहीं बल्कि जो सूरह काहफ में यानी माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी पूरा इकट्ठा कहना चाहिए। तो माशाअल्लाह कहने को अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में रखें और इसको सही तौर पे इस्तेमाल करें। कुछ लोग इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह का फर्क नहीं कर पाते। इंशाअल्लाह की जगह माशाअल्लाह और माशाअल्लाह की जगह इंशाअल्लाह, इससे रोकें। दूसरी बात यहाँ एक और पता चलती है, और वो क्या है कि जिस तरह फिरौन को डूबते हुए ईमान मिला था, इसी तरह बास दफा इंसान का जब सब कुछ डूब जाता है तो उस वक्त उसको ईमान मिलता है। अगर जिंदगी के अंदर ही ये काम हो जाए तो खुशकिस्मती है, इससे पहले कि मौत का नकारा बज जाए तो फिर इंसान उस वक्त अपने ऊपर ले। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसमें से एक चीज जो हमें अपने लिए और भी समझनी है, और वो क्या है कि जो चीज आपके अपने इख्तियार में ना हो वो आपकी अपनी नहीं होती। इसके लिए अब अगली आयतों को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
اب اگلی آیتوں میں ایک سٹریچ میں ہم کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. آیت 45 سے 49 تک مثال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھائی. وَدْرِبْهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. پیچھے بھی یہی انداز تھا. پہلے عملی کردار سے بات سمجھائی کہ دنیا ایک ڈھلتی چھایا ہے, کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی اور ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے پائیں گے. اب یہاں وہ چیز اور وہ منظر جو ہم اکثر ہی دیکھتے ہیں اس پہ غور کرنا سکھایا گیا. کیسی ہے دنیا کی زندگی کی مثال؟ کمائن انزلناہ من السماء فاحتلط به نبات الارض, جیسے پانی کہ ہم نے اسے اتارا آسمان سے پھر اس کے ساتھ مجل کر نکل آیا زمین کا سبزہ, یعنی آسمان سے بارش ہوئی زمین پر سبزہ آیا. فس بہا حشی منتظ روح الریاح, پھر کچھ وقت گزرا تو کیا ہوا, پھر وہ ہو گیا چورا چورا, اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں. حشیم کا لفظ حشم سے ہے, حاشیم میم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی نام حشام آتا ہے حشم. تو چورا چورا کرنا, توڑنا, روٹیوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے سوپ میں بھگو کر وہ لوگ کھاتے تھے, اسی سے وہ نام معروف ہو گیا. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ خزاں میں گرے ہوئے پتے جب پاؤں کے نیچے آتے ہیں تو چورا چورا ہو جاتے ہیں, ریزہ ریزہ کرنے کا معنی آ جاتا ہے اس میں. اور تزروح الریاح, لے کے پھرتی اس کو. تزور کا لفظ وہی ہے جو پیچھے بھی ہم نے ایک تو لحظے کے پیچھے پڑھا تھا. ریا ہوائیں, اشارہ ہے کہ آسمان سے بارش کے بڑھتے ہی زمین کے اندر جو سبزہ دکھتا ہے کچھ مہینے گزرتے ہیں اور وہ دوبارہ پھر زردی پہ چلا جاتا ہے. اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس ایک آیت میں چاروں سیزن آ گئے ہیں. پہلے بارش برستی ہے, پھر بیج زمین میں ڈلتے ہیں, پھر اگتے ہیں, پھر کچھ عرصہ وہ قائم رہتے ہیں, خزاں, بہار, ونٹر سب کچھ اس میں لگا لیں، اور بالآخر پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور درختوں سے ایک ایک پتا گر جاتا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی، سبزے کا اگنا، اس کا پھیلنا، اور پھر خشک ہو کر خسو خاشاک کی شکل بدل لینا. زمین جب سبز ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، ایسے لگتا ہے ہر طرح بہار آ جاتی ہے. پھر جوبن پہ ہوتا ہے، خوبصورت منظر لگتا ہے، لیکن کبھی نہیں جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ زردی چھائی جاتی ہے اور پتے ہی پتے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. دیکھا جائے تو ہم انسانوں کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. دو طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آیت قرآن پاک میں مختلف انداز سے مختلف جگہ پہ آتی ہے. جیسے اگر آپ نے قرآن پاک کی پچھلی آیات سورہ یونس میں بھی بات پڑھی تھی، انما مثل الحیات الدنیا، اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، پھر سورہ حدید میں بھی ہم پڑھیں گے علم انما الحیات الدنیا میں، کہ یہ دنیا کی زندگی دیکھنے میں بڑی حسین ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا انجام کیا. انسان سے اس کو کیسے جوڑیں گے؟ اگر آپ انسان کے وجود کے دو حصوں کو الگ الگ رکھیں، ایک ظاہری وجود، جس طرح پانی بارش کا آتا ہے تو زمین کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر سبزے کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح باپ کا پانی ماں کے رحم میں پکتا ہے تو انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اگر اس کو انسان کی روحانی زندگی سے لے تو پھر زندگی کا آغاز آسمان سے اترنے والی وحی سے ہوتا ہے، جس کو پیچھے سورت بنی اسرائیل آیت 80 میں پڑھ چکے ہیں، 85 میں پڑھ چکے ہیں، قل روح من امر ربی. قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے مردہ دلوں کی زمین پر بارش کا پانی پڑتا ہے، اور اس طرح سے انسان کے اندر ایک نئی زندگی آتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آگے سے پانی مزید نہ ملے، قرآن سے تعلق ٹوٹنے لگے تو دل مردہ ہوتا ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے، تازگی چلی جاتی ہے. اگر آپ نے اس قرآن کو نہیں چھوا تو دل کی حالت وہ نہیں رہتی جو روز سننے کے ساتھ ہوتی ہے. اگر انسان کی زندگی دیکھیے تو بچہ جس دن دنیا میں آتا ہے پھول کی کلی نہیں لگتا، ایسے نرم، گداز، ملائم، آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی، کلی کی بھی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی. آپ امیجینیشن میں کلی لے کر آئیں، چھوٹی سی زہرا عربی میں کہتے ہیں اس کو، کیسی کلی پہلے کچھ دن تک ایسی کملا جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ آنکھیں کھولتی ہے، پھر اس کے بعد پھول بنتی ہے. ابھی پھول مسکراتا ہے، گلاب کا پھول سوچے کہ اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈنٹھل کا ڈنٹھل رہ کر سب ختم. یہ تو تب ہوگا جب نیچرل فینومینن پورا ہوا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کلیاں پھول نہیں بنتی، کوئی کلی پہلے سے توڑ لی جاتی ہے، اور اگر پھول بن کے کھل بھی گئی تو وقت کے ساتھ یوں گردن ڈھا دیتا ہے پھول کہ جیسے ہارا ہوا جواری، کہ اب تو گناہ کی بھی طاقت نہیں رہی. یہی ہماری سب کی زندگی. یہ بوڑھے ہوں گے تو تب کہیں جا کے پتیاں جھڑیں گی، دانت گریں گے، بال اتریں گے. یہ تو جوانی میں نہیں پتا کہ کس کی زندگی کی کلی ٹوٹ جائے گی. ہر پھول دلہن کے گجروں میں نہیں لگتا، کچھ پھول میت پہ بھی ڈالے جاتے ہیں، بھی گجرے پہنے ہوں گے. کیا چمکتے خوبصورت پھول اور خوشبودار، ایک دو دن کے بعد جب آپ اس کو بن میں پھینکتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ اور کبھی ٹریش کین میں جا کے دیکھیں تو یہ فرق ہی نہ مٹے کہ کون سے پھول کس دلہن کی سیج سے اٹھے ہیں اور کون سے میت پہ ڈالے گئے تھے. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے انجام کی فکر کرو، ہر دن تمہاری زندگی سے حسن کم ہو رہا ہے، طاقت کم ہو رہی ہے، بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، چہروں پہ جھڑیاں پڑ رہی ہیں، اور ان سب کے موت، قبر میں اتارے جاؤ گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے. اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنے فکر اور اتنے غم. تو اصل فکر جو کرنے کی وہ ہے کہ یہ چند دن کی زندگی تو مٹ جائے گی، اس کے بعد کیا ہے؟ اب کو بہتر بنانے کے لیے آیت 46 میں ایک نسخہ دیا گیا.